ओम शांति। माइंड मैटर्स की श्रृंखला में हम इन दिनों बात कर रहे हैं एंग्जाइटी की। अगर हम देखें तो हमारे साथ अगर कभी भी कोई इंसिडेंस होता है, हम किसी ना किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं, लेकिन जब हम गुजर जाते हैं क्या उसके बाद हम उसे याद रखते हैं या उसका भी कोई असर हम पर होता है? क्योंकि एंग्जाइटी जो थी वो तो एक कॉन्स्टेंट, हमारे साथ जो चिंता करने का जो पूरा आस्पेक्ट है वो तो हमारे साथ कॉन्स्टेंट रहती थी, लेकिन जब इंसिडेंस होता है जो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुजरते हैं, लेकिन जब वो गुजर जाता है क्या हम उसको याद रखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं कि क्या उसका असर होगा? यही सारी बातें आज हम करेंगे अपने इस एपिसोड में। हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी और जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
ओम शांति।
डॉक्टर शर्मा, डेफिनेटली जब ट्रॉमा से गुजरता है, कोई भी घटना होती है, तो हम उस समय किसी भी तरह से कुछ भी करके उससे हम पार, हमारा पूरा मकसद होता है कि हम उस सिचुएशन को किसी तरह से बाहर निकल जाएं। लेकिन उसके बाद हम ज़्यादातर कहते हैं कि वो वक्त था, वो कैसे हम गुजरे, उसके बाद जो हम पर होता है, गुजरता है, क्या उसके ऊपर हम ध्यान दे पाते हैं?
एक्चुअली ध्यान ज़्यादातर लोगों का उसी के ऊपर केंद्रित रहता है,
सिचुएशन पे,
क्योंकि वो सिचुएशन इमोशनली इतनी ट्रॉमेटिक होती है, डिस्टर्बिंग होती है और ऑलमोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग होती है, या कम से कम मन में आता है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग थी, तो उस वजह से इंसान उसी पे फोकस रहता है और कोशिश करता है कि उसे भूल जाए। लेकिन वो जो कोशिश है वो फिर भी बार बार उसी पे ध्यान दिलाती रहती है। एक और बहुत बड़ा चेंज आया है हमारे समाज में कि पहले अगर कोई घटना किसी के साथ घटती थी तो वो घटना घटी और फिर इंसान आगे बढ़ गया। अब वही ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में, जहाँ पे खासतौर पे टेलीविजन है, तो बार बार दूसरे की एक्सपीरियंस को आप अपने अंदर इंटरनलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं रोड पे जा रहे हैं, आपके बहुत पास से एक दूसरी गाड़ी निकली, या आप बाइक पे हैं खासतौर पे तो ज़्यादा वल्नरेबल है, तो उस समय कुछ देर के लिए घबराहट होगी। शाम को आप घर पहुंचे और आपने टेलीविजन पे एक एक्चुअल एक्सीडेंट होते हुए देखा या एक्सीडेंट के बाद किसी व्यक्ति का हाल देखा, तो आपका माइंड उस चीज के साथ कनेक्ट कर जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड वाइकेरियस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। तीसरा, मान लीजिए किसी के साथ पहले भी कुछ हुआ हो, फिजिकली हुआ हो, किसी ने आपको क्षति पहुंचाई हो या सेक्सुअली हुआ हो, बाद में जब किसी और का एक्सपीरियंस आप सुनते हैं तो आपका वो पुराना एक्सपीरियंस जो है वो एकदम रिवाइव हो जाता है। और क्योंकि बेसिकली हमारा माइंड जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, तो वो कोशिश करता है कि उस एक्सपीरियंस को फटाफट पैक करके अलग हटा दो। लेकिन उसको अगर हम कॉन्शियसली शट डाउन करने की कोशिश करते हैं तो वहीं पे फंसे रहते हैं, और अगर उसका बार बार रिमाइंडर आता है तो वो शट डाउन हो नहीं पाता। और कुछ एक्सपीरियंसेस एक्चुअली ऐसे होते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, तो जब वो लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंसेस हैं या एटलीस्ट हमारे मन को ऐसा आघात पहुंचाते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस है फिर हम जितनी बार उसके थ्रू गुजरते हैं तो वही उस समय का एक्सपीरियंस, पूरी के पूरे इमोशंस, फिजिकल एक्सपीरियंस, वो लाइव हो जाता है और वो बार 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 रिकॉर्ड होके कॉन्स्टेंट बैकग्राउंड में चलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को फिर कई बार एक्सपीरियंस के सालों बाद तक वो चलता रहता है। अनदर थिंग दैट हैपेंस इज कि जो आसपास का माहौल है, जिसको हम क्यू कंट्रोल्ड लर्निंग कहते हैं, और ये शब्द हैं जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है लेकिन बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं। मान लीजिए किसी जगह पर छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, आप जब भी उस जगह से कुछ देर के लिए गुजरेंगे तो आपका ध्यान उस जगह पर पहुंचते ही उस पुराने इंसिडेंट की तरफ जाएगा। तो अब पिछले कुछ वर्षों में, क्योंकि जितने भी एक्सपीरियंस हैं उन एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ कनेक्ट करके बताया जाता है, अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या होता। एंड अनदर थिंग इज कि अगर आप उसी जगह पर रह रहे हैं, मान लीजिए कहीं पर अर्थक्वेक आया, तो उस अर्थक्वेक के बाद वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको बहुत देर तक उसी एक्सपीरियंस का कि जब अर्थक्वेक आया तो धरती ऐसे हिली, घर बह गए, या बाढ़ आई, स्पेशली अब जब हमारी कंट्री में भी रहा, तो जितने लोग वहां पे उस चीज से गुजरे उनके मन के सामने वो पूरे का पूरा सीन आ जाता है। और उसी वजह से अगर मान लीजिए उन्होंने किसी क्लोज फैमिली मेंबर को या क्लोज व्यक्ति को खोया हो तो उसके साथ भी वो एक्सपीरियंस भी जुड़ जाता है और उसी कारण से वो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग उस चीज से जूझते रह सकते हैं अनलेस वो इस चीज को समझ कर इसके ऊपर काम करें, नहीं तो उनकी नींद और कई तरह की फिजिकल
वही मैं इसी पे आना चाहती हूँ क्योंकि ये कहा जाता है कि टाइम बहुत बड़ा हीलर है। शुरू से हम ये सुनते आ रहे हैं, समय जो है वो बहुत हर बड़े घाव को भर देता है, लेकिन अगर उन पर मरहम ना लगाई जाए तो क्या सचमुच समय घाव को भरता है या कुछ और प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करता है उस घाव को?
अगर हम किसी भी घाव को, पर्सनल हो या जो बहुत ज्यादा लोगों के साथ खटा है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, और आज के समय में आर्टिफिशियल भी बहुत है। आर्टिफिशियल का मतलब है कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कहीं पे किलिंग्स हुई, या कोई एक्सीडेंट हुआ, स्पेशली इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जब होते हैं तो वे एक व्यक्ति के साथ नहीं होते। अगर उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाए, कुछ लोग हैं जो कि नॉर्मल जिंदगी अगर उनकी चलनी शुरू हो जाती है, किसी और चीज में बिजी हो जाते हैं तो वो आगे बढ़ जाएंगे, समय के साथ साथ उस चीज के बारे में कम ध्यान जाएगा क्योंकि अब जीवन की और सच्चाइयों ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन ऑलमोस्ट हर व्यक्ति को एक एक्यूट फेज से गुजरना पड़ता। उस एक्यूट फेज में रात की नींद खराब होती है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है, एक चीज होती है जिसको हम फ्लैशबैक्स बोलते हैं, यानी वही वाला इंसिडेंट पूरे का पूरा रील की तरह आंखों के सामने गुजर जाता है। उसी में अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ी घटना हुई है, यानी आपका कोई मान लीजिए आपके सामने ही बह गया, खास तौर पे अगर फैमिली मेंबर है, खास तौर पे अगर बच्चा है, और अगर आपको लगता है कि आप उसके लिए उतना नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था, या आप कहीं जा रहे हैं और एक्सीडेंट में एक व्यक्ति बच गया दूसरे की कुछ हो गया, तो वो गिल्ट जो उसके साथ में एसोसिएटेड है वो आनी शुरू हो जाती है, और उसके साथ ही साथ डर लगना शुरू हो जाता है कि ऐसा फिर तो नहीं हो जाएगा। लोगों की कई बार जिंदगी पूरी तरह से रुक जाती है ये सोच के कि वैसा इंसिडेंट फिर हो सकता है, खास तौर पे उस एरियाज में जहां पे कि कुछ डिजास्टर्स होने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर इसके बारे में वो व्यक्ति जो कि खास तौर पे आफ्टर द फर्स्ट अबाउट 3 to 4 weeks, एक्यूट फेज एक हफ्ते से लेके 4 हफ्ते तक रह सकता है, और उसके बाद करीबन 3 महीने में एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो व्यक्ति बाय एंड लार्ज अपने इश्यूज को पीछे छोड़कर आगे बढ़ पाएगा। लेकिन अगर पर्सनल ट्रॉमा हुआ है या पर्सनल लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम रही है तो ये पीरियड 3 महीने से लेकर 1 साल तक का भी हो सकता है। उसके साथ ही कुछ चीजें शुरू होती हैं जिनको हम एनिवर्सरी ब्लूज कहते हैं,
वो टाइम आते हैं,
यानी जब वो टाइम आता है या त्योहार आता है या कोई स्पेशल उस व्यक्ति के साथ जो बॉन्ड था वो होता है, या नेक्स्ट टाइम वैसी ही कोई चीज होती है, या नेक्स्ट टाइम मीडिया के ऊपर आप कोई चीज देखते हैं या सुनते हैं या अखबार में पढ़ते हैं तो वो सारी यादें ताजा हो जाती हैं, वो कुछ देर के लिए रहती हैं और फिर उसके बाद ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये इससे ज्यादा चले, अगर हर समय चले, अगर उसकी वजह से डे टू डे फंक्शनिंग में फर्क आए, उसकी वजह से कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो, या उसकी वजह से व्यक्ति ने किसी तरह की चीजों का सेवन करना शुरू कर दिया है, स्पेशली अल्कोहल का या पेन किलर्स का या नींद की दवाइयों का, तो उसकी वजह से उसका जो डैमेज है फिजिकल भी साइकोलॉजिकल भी वो कई गुना बढ़ सकती है और वो नॉर्मल नहीं है। उसके लिए ऐसे व्यक्ति को उसके आसपास वालों को काम करने की जरूरत।
सेल्फ हीलिंग क्या पॉसिबल है? क्योंकि आज हम इतने सारे ट्रॉमास, ये तो बड़ी बड़ी बातें हुई, हम एवरी डे ट्रॉमा से गुजरते हैं, रिजेक्शन, यू नो जॉब में किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरा जॉब छूटा, वो भी एक ट्रॉमा कई बार लोग लेते हैं, और उस ट्रॉमा को जब तक दूसरी जॉब मिलेगी तब तक तो ठीक है। और जैसा कि डॉक्टर अवधेश ने कहा कि हम अगर दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमें वो याद नहीं रहता, लेकिन मैंने देखा है कि जैसे ही थोड़ा सा भी वक्त मिलता है वो वापस रिवाइव होता है। तो एंड एक्चुअली एवरी टाइम वी कैन नॉट इवन टॉक टू अदर्स, सेल्फ हीलिंग क्या पॉसिबल है?
एक्चुअली आई थिंक जब कुछ होता है हमारे साथ तो पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो है, ये मेरे साथ क्यों हुआ? यू नो दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, एंड आई थिंक दैट क्वेश्चन स्टेज थ्रू द प्रॉब्लम एंड मच लेटर ऑल्सो आफ्टर द प्रॉब्लम. वाई मी, वाई मी, यू नो, वाई मी का तो आंसर नहीं मिलता. एंड देन यू ट्राई एंड लुक एट योर लाइफ एंड यू से, मैंने ये भी ठीक किया था, मैंने ये भी अच्छा किया था, मैंने ये भी किया था. अगर जीवन में कोई बहुत बड़ी बात, लाइक इफ यू लूज अ फैमिली मेम्बर, किसी के घर में आजकल बच्चे ने शरीर छोड़ा, एक्चुअली लोग बहुत ईजिली बोल देते हैं ना, बहुत सारी बातें उस टाइम कुछ भी आ जाती हैं. तो कोई सोचता है, कोई कहता है आपके कर्म का फल, तो हम अपने कर्म को चेक करने लग जाते हैं कि मैंने अपने जीवन में, मतलब बात जो भी हो लेकिन वो कहीं ऐसे जाती है या उस टाइम पे जो जाती है, तो यू गेट गो इन टू अ लॉट ऑफ सेल्फ के, यू नो द थिंग इज दैट आई एम नॉट अ राइट पर्सन ना, इसीलिए मेरे साथ राइट नहीं हुआ. या कोई कहेगा भगवान ने आपको किसी आपकी बात के लिए सज़ा दी, चाहे वो एक नेचुरल कलामिटी है, मैन मेड ट्रेजेडी है, आपकी पर्सनल ट्रेजेडी है, तो आपको किसी बात की सज़ा मिली. कोई कहेगा आपकी कुल देवी आपसे नाराज़ है, तो आप ये सब करने लग जाओ. सो यू आर बेसिकली लुकिंग फॉर एन आंसर कि वाई डिड दिस हैपन टू मी, एंड वेन यू गेट आंसर्स लाइक दिस, तब तो वो प्रॉब्लम छोटी उसकी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि भगवान मेरे साथ ऐसा करता है या मेरे
नेचर कर रही है.
मतलब यू नो दिस ऑल दीज थिंग्स मैग्निफाई द प्रॉब्लम एंड द पेन फॉर मी, बिकॉज द मैसेज दैट विल कम टू मी इज आई एम नॉट अ गुड पर्सन. सी मैसेज तो यही मिलने वाला है कि मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया था इसीलिए मेरे साथ गलत हुआ, क्योंकि जो सब अच्छा करते हैं उनके साथ सब अच्छा होता है. इवन इफ यू टेक अ नॉर्मल कर्मा फिलोसफी, तो हम कहेंगे जो अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा फल मिलता है. आज अगर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो विच मीन्स, तो अंडरलाइंग उसकी लाइन क्या है, आई हैव डन समथिंग बैड, दैट इज अ वर्स फीलिंग देन दिस. अब जैसे आपने कहा किसी ने रिजेक्ट किया, अब किसी ने रिजेक्ट किया वो एक्चुअली जिसने किया उसकी पर्सनालिटी
और सिस्टम का भी एक हिस्सा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है.
बट फॉर मी इट्स नॉट टेकन लाइक दिस ना. व्हाट विल आई फील, आई वाज नॉट राइट, आई एम नॉट गुड, देन आई विल रिवाइंड एंड आई विल से उसने भी किया था. बचपन में भी मेरे भाई या बहन को ही ज्यादा प्रेफर किया जाता था, आई वॉज ऑलवेज लाइक दिस. तो समवेयर स्वमान की कमी के कारण, यू नो, अपनी इसीलिए परमात्मा कहते हैं अपना ट्रू परिचय न पता होने के कारण हम बहुत जल्दी हर बात को अपनी उस पर ले लेते हैं कि ये मैं सही नहीं हूँ, एंड दिस विल मैग्निफाई द पेन. एंड जो स्वमान पहले से ही कम था, तो ये कोई मैसेज मिलने से और कम आ जाएगा. तो पावर आत्मा की जितनी कम होगी, सिचुएशन को फेस करने की ताकत उतनी घटती जाएगी. अब जब हमें समझ में आता है कार्मिक अकाउंट, कर्मा फिलोसफी इज राइट, बट इट हैज टू बी टेकन इन द राइट पर्सपेक्टिव. अगर आई एम स्टेइंग विद अ फैमिली मेंबर 20 साल, 30 साल, और 30 साल के बाद मेरे बच्चे ने शरीर छोड़ा, इट जस्ट मीन्स कि मेरा उस आत्मा के साथ 30 साल का हिसाब किताब था. 30 साल हमने इकट्ठे रहना था, उसके बाद उस आत्मा का अकाउंट कहीं और था. The soul had to leave. But when we take it, we say, मैंने उसके साथ कुछ गलत किया था और ये मुझे पाप मिला है, you know, ये मेरे को सजा मिली है मेरे पाप की. तो वो vocabulary और वो perspective change होने के कारण, it will just go off to another level altogether. तो why me is because, yes, I have created that energy. Not now, क्योंकि अगर हम rewind भी करेंगे तो हम इस जन्म के कर्म को rewind करेंगे. But the vocabulary is not paap and saza. This vocabulary is not right for me. The vocabulary is ki koi cheez maine kuch aise ki thi, uska consequence mere saath aisa aana. Simple thing like health. Aaj agar meri health theek nahi hai, it doesn't mean mujhe kisi baat ki saza mil rahi hai. It just means maine dhyan nahi rakha tha. To kisi cheez ka nahi dhyan rakhenge to uska consequence aayega. Ab mere paas do option hai, दर्द में, गिल्ट में, या अब ध्यान रख लें. लेकिन अगर गिल्ट में गए, रिग्रेट में गए, तो अब ध्यान रखने की पावर मेरी और भी कम हो जाएगी. सो आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई मी इज आई हैव क्रिएटेड दिस कर्मा, एंड ये उसका कॉन्सिक्वेंस है. लेकिन मुझे पास्ट के बारे में न सोचकर फोकस सिर्फ किस पर करना है, अब मुझे क्या करना है. लेकिन सिचुएशन आने के बाद ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. लेकिन अगर हम अपने आप को एम्पावर, सी एक ही सिचुएशन में दो लोग अलग अलग तरह से हिट होंगे. जैसे अवधेश भाई ने कहा, कलामिटी आई, एक शहर में आई, एवरीवन डजंट गेट अफेक्टेड द सेम वे. कोई एक व्यक्ति दो दिन में बैक टू नॉर्मल लाइफ होगा, एंड जैसे कहा कोई एक व्यक्ति पूरे जीवन बैक टू नॉर्मल नहीं आया. सिचुएशन दोनों के लिए सेम थी. सो इट्स टाइम टू आस्क आवरसेल्फ, इस व्यक्ति में क्या था जो वो दो दिन में नॉर्मल आ गया, और इस व्यक्ति में क्या था कि उसको पूरी जीवन ठीक नहीं लगी, क्योंकि सिचुएशन से पहले की उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ में फर्क था. सिचुएशन से पहले दिस पर्सन वॉज इमोशनली स्ट्रोंगर, तो बात का इम्पैक्ट नहीं. सेम लाइक फिजिकल एक्सीडेंट, चोट दोनों को लगी, एक स्ट्रोंगर था जल्दी ठीक हो गया, एक कमजोर था क्योंकि पहले शरीर का ध्यान नहीं रखा था, उसकी चोट चल रही है लंबी. सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो कि सिचुएशंस हमारे जीवन में कभी भी आ सकती है. क्योंकि जब सब कुछ ठीक सी, हम हेल्प के लिए कब जाते हैं, इवन स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेडिटेशन हम कब जाते हैं, परिस्थिति आने के बाद. इसीलिए लोग पूछते हैं कौन सी एज में, अभी तो सब ठीक चल रहा है ना, बच्चे को क्या जरूरत है या हमें क्या जरूरत है अब. अच्छा मेन स्टैंडर्ड लाइन, अभी तो टाइम भी नहीं है, यू नो. एंड जैसे ही कोई सिचुएशन आई उसके बाद जाने से इट्स नॉट द सेम, क्योंकि अब हम ऐसे तो हो ही गए, फिर उसमें से निकल में भी हेल्प होती है, बट वॉट इफ हैड वी टेकन केयर बिफोर. तो अगर हम सब ये अब ध्यान रखें कि वी आर लिविंग इन टाइम्स जहाँ छोटी बड़ी परिस्थितियाँ अचानक आ जाती हैं, अपने आप को फिजिकली जैसे ध्यान रखते हैं, इमोशनल ध्यान रखना भी इज द नीड ऑफ द आवर. सी 20 इयर्स बैक देयर वाज नॉट सो मच अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब ठीक है बातें तब भी आती थी, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा अचानक अचानक हो रहा है. पहले देखो जॉब ली, एक जॉब मिल गई कितने खुश होते थे, नौकरी मिल गई, नाउ यू आर सेफ टिल 60-65 आपकी, शादी हो गई बेटी की, अब ख़त्म, अब वहीं से जाएगी वो. अब नहीं है ना ये, अब तो रोज नहीं पता कि नौकरी के बाद कैसे आना है, बेटी के घर में रोज क्या हो रहा है. सो दैट अनप्रेडिक्टेबिलिटी जितनी हो चुकी है, माइंड विल हैव टू बी सो स्ट्रांग. एक हम अपने वैसे ही ध्यान रखें ताकि अगर जीवन में कोई छोटी बड़ी बात आती है, वी आर स्ट्रांग टू फेस इट, तो हमें शायद ये नहीं होगा, वी विल बी एबल टू क्रॉस इट इन अ बेटर वे. एंड दूसरा, अगर हो गया है देन स्पिरिचुअली अंडरस्टैंड कि ये कार्मिक अकाउंट था, कार्मिक अकाउंट बार बार नहीं आएगा. सेम यू नो दिस फियर कि ये मेरे साथ फिर होगा, ये बार बार होगा, कार्मिक अकाउंट था, एक बार एक था, कुछ ये होना था, इट्स ओवर, इट विल नॉट हैपन अगेन. आई नीड टू नो दिस दैट इट विल नॉट हैपन अगेन. ये हो गया, सो आई हैव टू कीप टॉकिंग टू माई सेल्फ बेसिकली, एंड देन गेट बैक टू नॉर्मल एक्टिविटी. एंड ऑफकोर्स फिर ज्यादा हो तो वी नीड टू टेक केयर, दैट्स इंपॉर्टेंट.
इसी में साथ ही साथ अब एक और बात समझने की है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति का जीवन की डायमेंशंस को देखें, फिजिकल भी है, इमोशनल भी है, स्पिरिचुअल भी है, काम की भी है, फैमिली की भी है, सोसाइटी की भी है, फाइनेंशियल भी है, तो किसी ना किसी डायमेंशन में कभी ना कभी कुछ तो होगा. लेकिन साथ ही साथ बाकी डायमेंशंस तो ठीक चल रही है ना. अगर कोई ट्रेजेडी हुई, थोड़ी देर के लिए हुई, और कोई भी घटना एक बार के बाद रिपीट नहीं होती, as she said, तो वो तो हो गई, अब बाकी जितनी चीजें ठीक चल रही हैं, अगर उनके ऊपर फोकस करें तो आपकी कोप करने की ताकत जो है. होता क्या है कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो हम हो जाने के बाद उसको पूरे जीवन में उस घटना का मूल्य क्या है इसका मूल्यांकन नहीं करते.
हम एक्चुअली इतने लो चले जाते हैं कि बाकी सब चीजों से भी ध्यान
उसको लार्जर देन लाइफ. जब तक वो ठीक चल रहा है हम सोचते भी नहीं है. थोड़ा सा खराब हुआ तो हम सोचते हैं कि ये सबसे खराब चीज हो गई है, बाकी सब चीजों का कुछ है नहीं. सो नाउ आल्सो इज रियलाइजिंग अनदर थिंग कि एक ही स्ट्रेस से, एक ही तरह के स्ट्रेस से, या बहुत ज्यादा लोगों को जब हुआ, तो ये देखने की बजाय कि इसको क्यों हुआ, जो दूसरे हैं जो कि सरवाइव किए हैं, कोप किए हैं और रेजिलिएंट हैं. अगर मच्छरों ने सबको काटा तो कुछ कोई मलेरिया होगा या डेंगू होगा, बाकी जो ठीक रहे उनमें क्या ऐसी ताकत है जो दूसरे भी अपना सके. और वहां पे जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स निकल के आए हैं कि वो लोग जो पहले वनरेबल थे, यानी खासतौर पर जिनको कि पहले डिप्रेशन रहे हों, या पहले एंक्शस रहे हों, या पहले इस तरह के एक्सपीरियंस से टूट गए हों, या अल्कोहल या ड्रग्स को अब्यूज करते हैं, या वो अकेले रहते हैं, या उनके सपोर्ट सिस्टम जो है वो कम है, उनको इस तरह की प्रॉब्लम होने के थोड़े ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो उनको कोई भी इंसिडेंट होने से पहले ही अपनी जिंदगी के उन एस्पेक्ट्स को बेटर करना इसलिए जरूरी है ताकि आगे जाके और कोई बात हो तो उसको वो अच्छी तरह से कोप कर सके। सो इट इज नॉट ओनली कि अगर आज आप किसी प्रॉब्लम से गुजरे हैं और उसके लिए आपने अच्छी तरह से उसको फेस कर लिया है तो वो उसी वक्त के लिए, वो आगे के लिए भी बहुत ज्यादा मदद कर सकते।
और बात ये है कि हम में से ज्यादातर लोग फेस जब करना होता है तो सारे रिसोर्सेज लगा के हम फेस तो करते हैं सिचुएशन को, बात आती है जब उसके बाद की हमारी जो प्रॉब्लम चल रही है। डॉक्टर शर्मा, एक जो इसमें मेरे को बात करनी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग, हम जब इससे जूझते हैं, हम जो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक टाइम होता है, इसमें जो हमें जो सब कुछ हो रहा है उससे हम अकेले ही जूझते रहते हैं। हम चाहे हम रेजिलियंस करें, चाहे, क्योंकि ये हम अपनी कमजोरी मानते हैं, और जैसा कि हमारे दिमाग में डाला गया है कि वक्त जो है वो हील कर ही देगा, एंड वी रियली कीप ऑन फाइटिंग द थिंग्स विच कम, चाहे हम उसके लिए कोई भी तरीका अपनाएं, यू नो, अपनी नॉर्मल लाइफ से हटके भी। बट कब हमें समझना चाहिए कि एक एक्सटर्नल हेल्प किसी भी तरह की, चाहे वो एक यू नो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, स्पिरिचुअल हीलर के पास जाना है, या कोई और हमें तरीका ढूंढना है, लेकिन कब हमें वो लेने के लिए अपने आप को, और हम नहीं कर पा रहे तो हमारे आस पड़ोस में, मतलब हमारे जो साथ वाले हैं उन्हें समझ में आना चाहिए कि आई थिंक दे नीड हेल्प। कब एक्चुअली रियलाइजेशन होता है?
इनिशियल फेज में, जो कि हफ्ते से 10 दिन तक रहता है, बिल्कुल एक्यूट फेज है, उसमें अगर किसी के साथ पर्सनल ट्रेजडी हुई है तो वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए गड़बड़ाएगा, इमोशंस आगे पीछे होंगे, और आमतौर पे इस फेज के बाद, इंक्लूडिंग जिसको कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेजडी डेथ कहा जाता है, उसके उसमें भी इस फेज में लोग थोड़ा सा 10-15 दिन के बीच में सेटल होना शुरू हो जाते हैं। जो स्लाइटली लॉन्गर फेज है, जिसको कि हम इंटरिम पीरियड बोलते हैं, जो कि 2 हफ्तों से लेके करीबन 3 महीने का है, उसमें अगर उस व्यक्ति की पीड़ा चलती जाए, वो उसी चीज के ऊपर फोकस्ड रहे, रादर समय के साथ साथ ज्यादा देर सोचने लगे, या अपनी नॉर्मल जिंदगी जिसमें कि बाहर जाना, लोगों से मिलना, परिवार को देखना, काम पे जाना, वो शामिल है, और वो धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ नहीं आ रहा, या उस व्यक्ति को कोई फिजिकल प्रॉब्लम थी जो कि बढ़ गई है, या उसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया है, या नींद आनी बिल्कुल खत्म हो गई है, या वो लगातार रोता ही रहता है, या वो लगातार अपने आप को ब्लेम करता रहता है, या वो लगातार कहता है कि अब वो हुआ था ये फिर से होगा, फ्लैशबैक्स उसके बढ़ने शुरू हो जाते हैं, नींद में वो बार बार उठता है, उठ के उसी इंसिडेंट को याद करता है, या वो ज्यादा शराब का या किसी और, इवन प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिंस हैं, अगर ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, उनका सेवन करता है, या उसकी वजह से उसको लगता है कि अब कोई फायदा नहीं है जीवन जीने का, मुझे अपने आप को कुछ कर लेना चाहिए। तो वो सिग्नल्स हैं कि ये व्यक्ति नॉर्मल से ज्यादा इस ट्रॉमा को महसूस कर रहा है। और उस समय में, पहले कई बार क्या होता था कि जब एक कम्युनिटी होती थी तो उस कम्युनिटी में लोगों को पता होता था कि ये व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव है, या ये व्यक्ति जो है इसको थोड़ी सी इस समय ज्यादा मदद की जरूरत है, और पूरी कम्युनिटी आ जाया करती थी उस समय मदद करने के लिए। अभी कम्युनिटीज जो है वो आर्टिफिशियल होती जा रही है, और हम सिर्फ ये देखते हैं कि कहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद मिल जाए, एनजीओ की मदद मिल जाए, या हम किसी से जाके बात करें, कोई बात करने वाला मिलता नहीं है, क्योंकि हमने कभी किसी से जब उसकी प्रॉब्लम थी तब बात नहीं की थी, तो लोग अंदर ही घुटते रहते हैं। एंड व्हाट वी आर सीइंग नाउ कि कई बार महीनों तक उनकी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, वो इससे जूझते रहते हैं, कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लोग डिप्रेशंस में चले जाते हैं, या अब्यूज में, बहुत ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज में चले जाते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने से पहले ही इस चीज़ को ठीक करना ज़रूरी हो जाता है, और इसमें ज़्यादातर दवाइयां नहीं मदद करती, अनलेस कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन है किसी को, या सुइसाइडल है, या बिल्कुल ही नहीं सो पा रहा है, या साइकोसोमेटिक इलनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उस व्यक्ति को उस समय में उस चीज के बारे में थोड़ा सा बात करके उसको ये भी बता के कि जीवन रुका नहीं है और रूप से बढ़ रहा है, और वो इवेंट इसको हम डीब्रीफिंग बोलते हैं, जिसके के अंदर उस व्यक्ति को शुरू में अपने बारे में बात करके जो गिल्ट है अगर, या उस समय का जो ट्रॉमा है उसको करने के बाद, बोलने के बाद उससे कोप करने के तरीके बताए जाते हैं, और अगर एक बहुत बड़े लेवल पे कोई कैलामिटी हुई है तो वो ग्रुप में भी लोगों के साथ बैठ के किया जा सकता है। इसमें ये पाया गया है कि जो सोशल सिचुएशंस हैं या जो सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ें हैं, खास तौर पे अगर उस कल्चर की एक्सेप्टेबल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, वो बहुत मदद करती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी ज़रूरी हो जाती है कि उस व्यक्ति को अकेले बैठ के ध्यान करने के लिए ना कहा जाए, क्योंकि उस समय में वो बैठ के सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचेगा।
वेरी ट्रू।
उसमें उसको किसी की एक्चुअल सपोर्ट की जरूरत होती है। उस व्यक्ति के साथ बैठ के आप भजन कर सकते हैं, या गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, या किस तरीके से ये खास तौर पे सिर्फ उसी के लिए नहीं हुआ, उसी के साथ नहीं लिया हुआ, दूसरे लोग भी इसमें से गुजर रहे हैं, इस चीज के बारे में थोड़ा सा बात करके, और कांस्टेंट सपोर्ट फिजिकल भी इमोशनल भी, ये करके उसकी मदद की जा सकती है। लेकिन अगर ये चीज चलती रहे या बढ़ती रहे तो फिर उसको जरूर किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट का बेसिक मतलब है साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट, या जो डॉक्टर है उस एरिया में, अगर ये लोग अवेलेबल नहीं है तो उनकी जरूरत हो जाती है।
इफ वी फेस अ सिचुएशन इन विच वी एक्सपीरियंस एंजाइटी, इट लीव्स एन इंप्रेशन ऑन अस। व्हेन वी वॉच similar situations on television or happening with others in reality, we tend to internalize their experience. Everything that is happening to us is only a consequence of a previous action. It is not a punishment by God, nature, or universe. Instead of focusing on what happened and why it happened, let us focus on what is the best solution now. If we take care of ourselves emotionally by daily practicing a spiritual and meditative lifestyle and living a life of values and principles, then the mind is better equipped to face a crisis. If the mind does not get healed, even after 3 months of trauma, is not able to concentrate on anything else, avoids family responsibilities or social interactions, loss of appetite, waking up in the night reliving the same trauma, then the person needs spiritual and medical counseling.